سورت قصص، انبیاء کرام کی سٹوریز، اور لکھ لیجئے حضرت موسیٰ کی سیرت. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی بک پڑھتے ہیں نا، رحیق و مختوم یا تجلیات نبوت اور محسن انسانیت. اگر موسیٰ کی سیرت پڑھنی ہے تو سورت قصص پڑھ لیجئے. واقعہ طور بھی بہت جگہ آئے ہیں لیکن یہاں ترتیب کے ساتھ آئے ہیں. دیکھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین. سورت قصص شروع ہوتی ہے. اس کی خوبی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی سیرت اس سورت میں ملتی ہے. اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بات کی، کوئی تمہید نہیں باندھی، فوراً موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ ہے. اب اس قصے کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب ہم مختلف واقعات سے اپنے لیے عمل کی باتیں لیں گے، خاص طور پر پارے کے اندر اللہ تعالیٰ سے تعلق اور دعا کا موضوع چونکہ لیا ہے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اللہ کی طرف سے جو بھرپور قسم کی مدد تھی اس کی وجہ کیا تھی. اور وہ وجہ آپ ابھی نوٹ کر لیں، موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے بولیے گہرا تعلق. آپ بھی پیدا کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ آپ کی بھی سنے گا. آیت چار میں اللہ تعالیٰ فرعون کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ فرعون کے حکومت کرنے کا انداز کیا تھا، کہ لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا، نسلی امتیاز برتتا تھا. مثلاً جیسے کلاس سسٹم ہوتا ہے، آج کل کہتے ہیں نا کہ کالونائز کر دینا، ڈیوائڈ اینڈ رول، یہ تھی فرعون کی پالیسی. اپر کلاس اور لوور کلاس میں بانٹا ہوا تھا، اور ایک گروہ کو بہت ذلیل کرتا تھا. یہ اس دور کے مسلمان تھے. اور اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ بہت پیاری بات بتا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. جی، تو فرعون نے خواب دیکھا، اور اس خواب کی تعبیر میں یہ بات چلی آ رہی تھی کہ بنی اسرائیل جو اس دور کے مسلمان تھے، ان کی نسلوں میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کا تاج و تخت ختم کر دے گا. فرعون کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے وقت کی سپر پاور تھی، تو حکم دے دیا کہ جو بچہ ان کا پیدا ہو اس کو مار دو. اب جب بچے مرنے لگے تو جو غلامی وہ ان سے کرواتا تھا وہ تو نہیں ہو سکے گی، یعنی اس کے غلام مرنے لگے، کہہ لیجئے نسلیں ختم ہو جائیں گی تو اس کے غلام نہیں رہیں گے. پھر اس نے کہا چلو ایک سال کے پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کروا دو اور دوسرے سال والوں کو چھوڑ دو. ہر دور کے فرعون کو یہی اچھا لگا کہ مسلمانوں کی نسلیں کم ہو جائیں. خیر، اب ہوا کیا کہ جس سال میں ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اس سال میں بچوں کو قتل کرنے کا حکم نہیں تھا، اور جس سال میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس میں بچوں کے قتل کا حکم تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی ماں کو وحی سے بتایا کہ تم اس بچے کو ایک صندوق میں ڈال دو اور دریا کے کنارے باندھ دو، جب دودھ پلانا ہو دودھ پلا دو، اور جب دشمن کے آنے کا ڈر ہو تو رسی کے ساتھ باندھ کر دریا میں چھوڑ دو، اور غم نہ کرو، ہم اس کو تیرے پاس لے آئیں گے اور پیغمبری عطا کریں گے. یہاں ماؤں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ موسیٰ کی ماں نے اللہ کے حکم پر بچے کو دریا میں ڈال دیا. آج کی ماں کا کیا حال ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ دین سیکھنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے تھوڑی دیر بچوں کو اپنے سے الگ کرنا چاہیے. فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو آپ کو اپنا کالج اور یونیورسٹی کا ٹائم یاد آ جائے گا، بندہ ویسے ہی اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتا ہے. اور بچوں کو بھی اپنے سے ذرا سا الگ کرنا چاہیے. گھر میں الحمدللہ کوئی نہ کوئی تو ہوتے ہیں. ایک ڈیل باندھ لیجئے، میں سارا کام کروں گی پر دو گھنٹے میرے بچے کو آپ رکھیں گے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ علم سے کسی کو مفر نہیں ہے. اگر بچوں والی ماؤں نے نہیں سیکھنا نا دین، تو میرا خیال ہے کسی کو بھی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پال تو بچے آپ رہی ہیں اور آپ کی گود ہی بنجر ہے. ماں کو ہی نہیں پتا کہ بچے کے ساتھ کیسا معاملہ رکھنا ہے، اور ماں کے اندر اپنا تقویٰ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو بچے کو کہاں سے دے گی؟ تو بچوں والی ماؤں کے لیے تو قرآن پڑھنا فرض ہے، فرض ہے. ہر ایک کو پڑھنا پڑے گا تاکہ آنے والی نسلوں کی حفاظت کر سکے. آپ دیکھیے کہ موسیٰ کی ماں کا امتحان سب سے سخت تھا. ایک ماں کے دل میں جو بچے کے لیے محبت ہو سکتی ہے، اس کی بہترین مثال اس قصے میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن اللہ کا حکم بچوں سے بھی پیارا ہوتا ہے، اس کو ہائی لائٹ کریں. سوال کیجئے، کیا مجھے اللہ کا حکم اپنے بچے سے زیادہ پیارا ہے؟ بس نماز کا وقت ہوا ہے اور ماں کہتی ہے نہیں بیچارہ رات کو دیر سے سویا ہے، اس کو سونے دو. بس مائیں مسجد نہیں بھیجتی نماز کے لیے کہ ان کی نیند خراب ہوگی تو سمندروں اور دریاؤں میں کہاں ڈالیں گی. 3 سیکنڈ چھوڑ دوں اس پہ، آپ کو سوچئے گا. اگر آپ کے گھر میں 10 سال سے بڑا بیٹا موجود ہے اور آپ اس کو مسجد نہیں بھیجتی، تو یہ سوال پھر آپ کے لیے ہے. और जो बच्चे आज सुबह उठकर मस्जिदों में नहीं जाएंगे ना, कल वो खुदा ना खास्ता दुश्मन के आने पर उसके हमले के वक्त भी उठकर नहीं जाएंगे दिफा के लिए। ये फजर की नमाज असल में मर्दों को तैयार करती है कि रात के अंधेरों में अगर दुश्मन हमला कर दे तो तुमने उठकर जाना है। सोचने की बात है कि हम किस तरीके से अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। जो अल्लाह के वादों पर यकीन करता है अल्लाह ताला उसको काफ़ी हो जाता है। हर जुमला एक जेम है, आप उसको जिस तरह भी समझ लें। अल्लाह ताला खुशखबरियाँ दे रहे हैं, तुम्हारे बच्चे अगर अल्लाह के रास्ते में जाएंगे तो तुम्हारे ही पास वापस आएंगे, गम ना करो। एक सवाल करूं, आज हम बच्चों के दुनियावी स्टेटस की बेहतरी के लिए तो बहुत सारी कुर्बानियां देते हैं ना, देते हैं कि नहीं देते? समंदर में अगर मूसा को डाला जाता तो सिर्फ समंदर की लहरों से खौफ आ सकता है ना कि डूब ना जाए। बस सफ़ा हमारे बच्चे तो माशरे के बेरहम हाथों में होते हैं, आंख ओझल पहाड़ ओझल, लेकिन हम रिस्क लेते हैं, उनको अपने से दूर भी करते हैं, उनको बहुत सारी दुनियावी चीज़ों से अलग भी होना पड़ता है सिर्फ इसलिए कि उनका दुनिया का स्टेटस बन जाए। तो क्या दीन इस काबिल नहीं है कि हम दीन की खातिर अपने बच्चों को समंदरों में तो नहीं अल्लाह के हुक्म पे डाल दें? आज ज़रूर अपने बच्चों से, बेटों से भी और बेटियों से सेम मामला है। आज घर जाकर बैठा कर बड़े प्यार से मोहब्बत से ये सवाल पूछिएगा कि बेटा मैट्रिक में तो आपके 1000 से ऊपर नंबर आए हैं, नमाज़ों का क्या हाल है? फजर कितने बजे पढ़ी थी? अमूमन जोहर कब पढ़ती हैं आप? असर कब है? ईशा कितने बजे है? याद रखिए कि अगर सिर्फ दुनिया बनाते रहेंगे तो दुनिया तो नहीं बनेगी, आखरत बिगड़ जाएगी, और अगर आखरत की फिक्र रखेंगे तो इंशाल्लाह दुनिया भी अल्लाह के हुक्म से बन जाएगी। हुआ क्या कि मूसा की माँ ने बच्चे को दरिया में डाल दिया, मूसा का संदूक फिरौन के महल के आगे जाकर रुका, और हज़रत आसिया रज़ी अल्लाहु अन्हा के दिल में अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी। कहते हैं कि इस वक्त तक ये औलादें नरीना से महरूम थीं, जो ही बच्चा महल में आया फिरौन को एकदम इशारा हुआ कि हो न हो ये वही बच्चा है जिसकी बात ख्वाब में थी कि मेरी सल्तनत को ख़त्म करेगा, तो लिहाजा इसको मारने का हुक्म दिया। फिरौन की बीवी ने कहा, क्यों मारते हो, मासूम सा बच्चा है। हज़रत आसिया ने कहा कि मैं इसको आंखों की ठंडक बना देती हूँ, लेकिन फिरौन ना माना। इससे क्या पता चलता है कि बाज़ दफ़ा गलत बात मुँह से निकल जाती है तो इसकी सज़ा उसको भुगतनी पड़ती है। जैसे हज़रत आसिया ने यह बात कही थी, शायद ये हमारी आंखों की ठंडक बने। फिरौन भी कहता तो हज़रत आसिया की तरह इसको भी ईमान मिल जाता। और इसमें गौर करने की ज़रूरत है कि जब माँ की दुआएं लगती हैं तो यहाँ मूसा दुश्मन के घर में है, अल्लाह ने नहीं मरवाया, क्यों नहीं मरवाया? अल्लाह फिरौन से नहीं डरता? आज लोग मैदान जंग से वापस आते हैं और अपने ही किसी प्रोग्राम के मनाने में गए और कोई हादसा हुआ तो वहाँ मर जाते हैं, औलादें चली जाती हैं, क्या बेटे अल्लाह के रास्ते में ही जाएं तो डूबते हैं? क्या बच्चे सिर्फ अल्लाह के रास्ते में जाएंगे तो ही मर जाएंगे? और क्या सिर्फ उनको दीन सिखाएंगे तभी उनकी दुनिया बिगड़ जाएगी? कितना कमज़ोर अकीदा बन चुका आज के माँ बाप का। हरगिज़ नहीं डूबते। दिल को इस चीज़ से खाली करें, अगर मौत आनी है तो आकर रहनी है, वो बेहतरीन मौत है जो अल्लाह के रास्ते में आए। पहले दौर की माएँ अपने बेटों के लिए ये मन्नतें मानती थी कि मेरा बेटा मैदान जंग में जा रहा है, ऐ अल्लाह इसको शहीद करके लाना, मैं शहीद की माँ बनना चाहती हूँ। आज तो इस लफ्ज़ को कहने से खौफ आता है, बाकी बातों को तो छोड़ दीजिए। आज कहाँ गई वो माएँ जो बच्चों को अल्लाह के हुक्म पर समंदरों में तो क्या दुश्मनों के आगे डालती थी? सवाल कीजिए खुद से, हाईलाइट करें इस जुमले को। एक लेक्चर भी हुआ है कुछ अर्सा पहले, वो माएँ किधर हैं जिनको फ़िक्र आखरत थी। हकीकत यह कि आज माँ बदल गई है। आप कहते हैं ना नस्लें बदल रही हैं, माजरत है, आज के बच्चों को बेहतरीन माएँ नसीब नहीं हुई। वजह क्या है कि उन औरतों ने अल्लाह की बात नहीं पढ़ी। कुरान पढ़े बग़ैर, समझे बग़ैर आप बेहतरीन माँ नहीं बन सकती। आप पेरेंटिंग पे 10 कोर्स कर लें, और रही बात यह कि हम अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा फैसला कर पा लेंगे, ये नहीं होगा, क्योंकि देखें कि मूसा फिरौन के हाथ में है, फिरौन मारना चाहता है लेकिन अल्लाह ने नहीं मारने दिया। अल्लाह की बातों को मानकर आखरत तो मिलती है, दुनिया भी मिलेगी। हम नहीं समझते, हम कहते हैं कि हम इसकी तरफ आएंगे तो दुनिया छिन जाएगी, तो चलो कुछ आखरत तो बनेगी। हरगिज़ नहीं, पहले दुनिया बनेगी फिर आखरत बनती है। जब हम ये बात सोच लेते हैं कि हाय आखरत तो बनी है, दुनिया वीरान हो गई, तो हमारे फ़ैसले बदलने लगते हैं। यकीन रखें कि आप इस पारे को पढ़ते हुए अल्लाह से ताल्लुक़ को बढ़ा लें कि जब तक मैं अल्लाह की तरफ आती रहूँगी, अल्लाह मेरे लिए दुनिया को फैलाता रहेगा। ये अल्लाह का वादा है, रास्ते में दुनिया पड़ी भी मिल जाती है। जो आखरत को मतमाए नज़र बना लेते हैं, इनको दुनिया रास्ते में ही मिलती है। मोमिन जब अल्लाह के हुक्म से नेकी करता है तो आखरत में अजर मिलता है, लेकिन दुनिया में भी इसको इसका अजर मिलता है। नक्द निशानी है, हाईलाइट करें। इत्मीनान कल्ब, खुशी, हर चीज़ से बेनियाज, परवाह नहीं, कोई गम नहीं, कोई परेशानी नहीं। लोग मुस्तरब हैं कभी अपने गमों पर, कभी दूसरों पर, वो अपनी एक धुन में लगे हुए हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अपना बना ले, अपने काम का बना ले, अपने गम लगा ले, तो सब गम दूर हो जाएंगे। आप अल्लाह के दीन को अपनी खुशी बनाएं, आपका हर वक्त खुशियों में गुजरेगा। आप अपनी ज़िंदगी में खुशी का रुख बदल कर देखें, आप जीने लगेंगे। आप देखिए कि बाद जब हम किसी चीज़ के इंतज़ार में होते हैं ना, आपको पता है कि इंतज़ार का वक्त बड़ा कठिन होता है, कितने लोग इससे मुत्तफिक हैं जी? आप उस वक्त में कोई काम शुरू कर दें, वक्त का एहसास ही नहीं होगा। तो बेहतरीन वक्त का इस्तेमाल कुरान पकड़ लें। आप कहेंगे और भी ना वीज़ा लगे, क्यों ना लगे, नहीं आता रिश्ता ना आए, कुरान का कोर्स पूरा कर लें। यकीन करें ये बातें अभी आप सबको बड़ी जज्बाती लगती होंगी, मुझे पता है, क्योंकि आपने चखी नहीं है। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। आपको शुद्ध बुद्धि नहीं रहती गम कि आपको कोई चुटकी काट दे, आपको चोट लगे। मैं आपको इसकी एक मिसाल दे सकती हूँ, माशाल्लाह सारे खाना पकाने में एक्सपर्ट हैं, हर पाकिस्तानी औरत को अवार्ड दिया जा सकता है। जब आप धुन में लगे होते हैं कि आज माशाल्लाह मैके वाले आ रहे हैं, अपनी दोस्तें आ रही हैं, एहसास होता है कितनी दफ़ा छुरी लगी है आपको प्याज काटते हुए, आलू काटा तो सात उंगली की पोर भी कटने लगी, धुन लगी हुई है, कुछ ओढ़ के बैठ जाता है, हाय नहीं अब मैं खाना नहीं बना सकती, मेरे तो खून निकल आया। ये धुन जो है ना, ये आपको इधर दिखेगी। लोग कहें कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं, आप कहेंगे मुझे तो होश ही नहीं। और बाज़ दफ़ा नया नया ईमान जब अंदर आता है ना, बंदा इतने बड़े बड़े फैसले करके वो पहाड़ों पे चढ़ जाता है, बाद में कहता है मैं यहाँ पहुँच कैसे गई। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक़ल से अगर इब्राहिम पूछते तो वो आग के किनारे पे खड़े डर रहे होते। ये काम कूद पड़ने के होते, बहुत नहीं सोचते, सोची पे आते बंदियाँ भी गईं, ज़्यादा नहीं सोचना। तो मैं तो अपने दिल में मूसा की माँ पे रश करती हूँ, और हदीस भी है, यानी मोमिन की मिसाल उम्मे मूसा जैसी है, अपने ही बच्चे को दूध पिलाए और उजरत भी हासिल करे। किसी माँ को बच्चे को दूध पिलाने के पैसे नहीं मिलते, वही रोटी कपड़ा मकान पे जो चल रही है वही मिल रहा है, लेकिन मूसा की माँ को पैसे मिलते थे। फिरौन के घर से उसका सारा राशन पानी आता था, क्योंकि वो फिरौन के लिए उस बच्चे को पाल रही थी। तो नेकियां करें और इन्जॉय करें, आपका हक़ है कि आपकी ज़िंदगी भी बड़ी खूबसूरत हो। धक्के नहीं खाने ज़िंदगी में, वो नहीं करना जो हमारे माशरे की 80% औरतों और लड़कियों के साथ हो रहा है। कुरान पढ़कर ज़िंदगियों के आगाज़ कीजिए, आपको हर रिश्ते की बारीकियां समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला। चलिए आयत 16 पे चलते हैं। हज़रत मूसा की दुआ, एतराफ़ करते हैं कि अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया। याद रखिए कि कुरान पढ़ने के बाद इंसान को एतराफ़ करने में ज़रा देर नहीं लगती। हाँ हाँ ये मेरे से हो गया, मैंने सोचा तो नहीं था लेकिन हो गया। रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िरली फ़ग़फ़र लहू इन्नहु हुवल ग़फ़ूरुर रहीम। हज़रत मूसा की दुआ में एतराफ़ गुनाह है। अल्लाह को वो बंदा बड़ा प्यारा लगता है जो अपनी गलतियों का एतराफ़ कर ले। और अगर दिल से हम ये सोचने बैठे हैं कि हाँ मैंने क्या किया है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मैं तो अच्छी हूँ, तो ये तकब्बुर होता है। यानी बाज़ दफ़ा लोग अपनी गलती मानते ही नहीं, मेरा क्या कसूर है, दैट वॉज हिज मिस्टेक, ही वॉज रॉन्ग। अच्छा फिर हम ऊपर दूसरों को कुरेदते हैं, ये उसका कसूर था, ये उसके बाप का कसूर था, ये उसकी बहन का कसूर था, ये उसकी माँ का कसूर था, ये मेरे बच्चे का कसूर है। नहीं, अपने ऊपर लीजिए इन्नी ज़लम तो नफसी। हमेशा अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें, चेक करें, जब कभी मुझसे गलत काम हो जाता है तो मैं मानती हूँ कि मेरी गलती से हुआ है, या कोई दिल दुखाए या दिल तोड़े तो इस वक्त ये ख्याल आता है कि ये मेरा ही कोई गुनाह है जिसकी वजह से इसने मुझे सताया। ये है असल में वो मुकाम जहाँ अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करता है। कई लोग 125,000 बार आयत करीमा पढ़ते हैं जिसमें ये इकरार आता है कि इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, कि मैं ही ज़ालिमों में से हूँ, लेकिन दिल से ख़ुद को ज़ालिम नहीं मानते, मज़लूम मानते हैं। हमने क्या किया, ये तो उसका कसूर है। हमेशा दूसरों का कसूर निकालते हैं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि गलती से, ख़ता से कोई काम हो तो फ़ौरन मान लो कि ये मेरे ही नफ्स का कोई गुनाह होगा। तो जब दिल से माना तो अल्लाह ने उनकी मग़फ़रत फरमा दी। अल्लाह ताला के दरवाज़े कभी बंद नहीं होते, ये याद रखिए, ये अल्लाह की हम पर एक ख़ास रहमत है। इसके बाद आयत नंबर 22, वलम्मा तवज्जह तिल्का मदयन, और जब वो मदयन की तरफ मुतवज्जे हुए कहने लगे उम्मीद है मेरा रब मुझे सीधे रास्ते की रहनुमाई करेगा। मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला से उम्मीद नज़र आती है। यहाँ से एक ईमान वाले का मामला दिखता है, और वो क्या है इसको हाईलाइट कीजिएगा। अगर खुदा न खास्ता आपकी ज़िंदगी का कोई टफ़ टाइम चल रहा है इस वक्त, जो उम्मीद तो नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी हो सकता है, ज़िंदगी में धूप छाँव तो आती रहती है, अगर कभी ऐसा है, इतना गम हो कि सर से पांव तक आप गमों के समंदर में गोते खा रहे हैं, लेकिन उम्मीद की किरण नहीं छूटेगी। आप नमाज के वक्त ही नहीं, पूरे वक्त इबादत की हालत में हैं, आप दुखी हैं, आपको कोई गम मिला हुआ है, कोई दिल तोड़ रहा है, किसी के दिल में आपकी मोहब्बत नहीं, और आप कह रहे हैं बस कल ठीक हो जाएगा। यानी इंतज़ारुल फर्जी, जो हदीस में मामला ना वैसे है, अच्छे दिनों का इंतज़ार इबादत की बेहतरीन कैफियत है। ये मामला बस आज ही ठीक हो जाएगा, यानी अगर आप अच्छे दिनों की उम्मीद में बैठे हुए हैं ना, तो असल में आप इबादत की हालत में बैठे हुए हैं। ये तड़प पैदा करें, आपका वो पूरा वक्त इबादत में है, ईमान वाले की ज़िंदगी में मायूसी आ ही नहीं सकती। ये जो हम ढीली ढीली बातें करते हैं, असल में ईमान कमज़ोर होता है। ये हिदायत सिर्फ आखरत के लिए नहीं होती, जब अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ जाता है तो अल्लाह आपको ज़िंदगी गुजारने के रास्ते भी बताता है। कोई मौका याद करें आपकी ज़िंदगी का, कोई मामला, कोई बात अटकी हुई है, उम्मीद रखें अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखाएगा। इस्तखारा कर लें, अल्लाह से मदद मांग लें, ये भी तो दुआ की एक किस्म है। इस्तखारा क्या, खैर का तलब करना, टू सीक द खैर। आप देखेंगे जो अल्लाह के साथ आपकी उम्मीद होगी ना, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। अगर आप कहेंगे कि देखना मेरे साथ तो बुरा होगा, तो फिर आपके साथ बुरा ही होगा, इसको नोट कर लें। और अगर आप कहते हैं नहीं मेरे साथ बहुत अच्छा होना है, तो अच्छा ही होगा। हदीस कुदसी है, अल्लाह सुब्हान तआला फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ, जो बंदा जैसा मेरे साथ गुमान करता है वैसा ही मैं इसके साथ मुआमला करता हूँ। तो फिर अल्लाह ताला से कैसा गुमान करना है अपने, मैंने अच्छा गुमान करना है। इसके बाद आयत नंबर 23 से अगली आयत में हज़रत मूसा का मामला अल्लाह ताला के साथ जो हुआ वो बयान किया गया। यानी इन सारी आयत में पता चलता है कि औरत को अगर मजबूरी हो तो ज़रिए मुआश के लिए घर से वो निकल सकती है, लेकिन शरायत के साथ। आयत 24 में हज़रत मूसा की इतनी प्यारी दुआ है कि इस दुआ के बारे में आता है कि कभी बंदे के दिल में ऐसी कैफियत आ जाए कि समझ ही ना आए कि मांगूं क्या और क्या ना मांगूं। होता है ना कभी ऐसा, भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, थकन भी है, नींद भी आ रही है, शावर भी लेना है, बेचैनी भी है, कोई गम भी लगा है, अब समझ नहीं आ रही कि पहले क्या करूं, तो ये दुआ मांगी है। क्या दुआ है, मेरे साथ ही दोहरा ले, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लत इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ऐ अल्लाह तेरी तरफ से जो खैर भी उतरे मैं सब का फ़कीर हूँ, मुझे सभी कुछ चाहिए। और कहते हैं कि इस दुआ के मांगने के बाद मूसा को रोटी भी मिल गई, कपड़ा भी मिल गया, मकान भी मिल गया, शादी भी हो गई, सब कुछ मिल गया। ये अल्लाह की शान है। ज़िंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं आपको खुद नहीं पता होता क्या मांगूं, इतना डिप्रेशन होता है कि कहते हैं कि मांगते ही नहीं। बस लोग कहते हैं हमने मांगना छोड़ दिया है। अक्सर बच्चियाँ मुझे कहती हैं मैं अल्लाह से नाराज़ हूँ, नऊज़ु बिल्ला, अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैं नहीं मांगूंगी अल्लाह से, मैं नमाज़ छोड़ दी है, अब मैं और गुनाह करूँगी। तो करिए, शौक से कीजिए, फिर आखिरत भी जहन्नम होगी अगर दुनिया आपको जहन्नम लग रही है। तो ऐसा कभी नहीं करना। नमाज में असर नहीं आता, दिल नहीं लग रहा, तो इस वक्त मूसा की ये दुआ मांगें कि ऐ रब, जो खैर तूने मुझ पर नाजिल की है मैं तो इसका मुख्ताज हूँ। यानी क्या मांगू और क्या ना मांगू सब कुछ तू दे दे जो तू चाहे। फिर आयत 42 से पता चलता है कि बड़े बनने वालों को अल्लाह दुनिया में छोटा कर देता है जो सबसे बड़ी ज़ात को नहीं मानते। यानी कभी बड़ाई ना मांगिए, तकब्बुर, ओहदे, नाम, लीडरशिप। कुछ लोगों के लिए तो लफ्ज़ लीडर होना ही एक फितना बन जाता है। इंचार्ज, माशाल्लाह, अब सारा मुल्क आपके हवाले कर दे क्योंकि आप इंचार्ज बन गए। यानी याद रखिए कि नामों से भी शख्सियत पे असर जाता है। तो दुनिया में छोटे बन के रहेंगे, आजजी मांगेंगे तो अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त देगा इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह आयत 55 से पता चलता है कि मुसलमान को ये बिल्कुल ज़ेब नहीं देता कि लोगों के साथ बहस मुबाहसा करे, फजूल बातें करे, हक पहुंचा दें, अच्छी बात बता दें। मान गए तो अच्छी बात है, और कोई नहीं मानता तो तुम्हारा अपना रास्ता, हमारा अपना रास्ता। यानी हमारा दीन बहसों में पड़ने वाला दीन नहीं है। हर बंदे को अल्लाह ने अक्ल भी दी है, समझ भी दी है। जो नहीं मानता उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया, वक़ालु लना आमालुना वलकुम आमालुकुम सलामुन अलैकुम ला नबतहिल जाहिलीन। यानी हत्तुल वसा, बहस मुबाहसे से बचिए। इसके बाद अगली आयत 56 में जो बात है बहुत काबिल तवज्जो है, हाईलाइट कीजिएगा इसको। हिदायत के रास्ते की जो सबसे बड़ी रुकावट हर दौर में हुई, अब उसका जिक्र हो रहा है। लोग आज भी कहते हैं अगर हम कुरान और इस्लाम पर अमल करेंगे तो क़दामत पसंद हो जाएंगे। क़दामत पसंद किसको कहते हैं? बैकवर्ड माइंड, नैरो माइंडेड। अगर शरीयत को अपनी ज़िंदगी में लागू किया तो हम अजनबी हो जाएंगे, फिर बच्चों के रिश्ते नहीं होंगे। इस आयत में बहुत बड़ी हकीकत खुली हुई है कि बहुत सारे लोग हिदायत को समझने के बाद हिदायत पर क्यों नहीं आते, क्यों नहीं अपनाना चाहते। इसलिए कि इन्हें खौफ होता है कि हम लोगों की नज़रों से गिर जाएंगे, गैर मकबूल हो जाएंगे, अजनबी बन जाएंगे। और आज यही वजह है कि जहाँ पर सच्चा इस्लाम आता है तो लोगों को अजनबी लगता है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वाकई ऐसा है, तुमको यकीन है, मैं तो नहीं मानता, क्योंकि तुम हरम को देख लो, हर वक्त लोगों से भरा होता है। जो फल कहीं ना मिले वो वहाँ मिलता है। तो अगर दीन की वजह से घर वीरान होने लगें और तुम्हारी दुनिया वीरान हो, तो फिर हरम तो कब का वीरान हो चुका होता। हकीकत ये है कि लोग हिदायत से जो दूर रहते हैं वो बतर की वजह से रहते हैं। 10वां पारा याद आ रहा है? बतर, पैसे वालों का मर्ज़, फ्लॉन करना, शो ऑफ, रियाकारी, दिखावा। क्योंकि ज़िंदगी सादा हो जाती है, दिखावा नहीं रहता तो इंसान खुश रहता है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे अंदर से बतर को निकाल दे। फिर आयत नंबर 60 में दुनिया और आखरत का तकाबुल है, और साथ में अक़ल की बात आई कि अक़ल से पूछो। क्या है आयत? वमा ऊती तो मिन शई इन फमताउल हयात दुनिया। और जो कुछ तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी में दिया गया ये तो दुनिया की ज़िंदगी और उसकी जीनत है। वमा इंदल्लाहि खैरुन व अबका, जो अल्लाह के पास है वो बेहतर भी और बाकी रहने वाला है। अफलात आकिलून। आप देखेंगे कि अक़ल की बात एंड पे करके बताया जाता है कि ये बात तो अक़ल से ही समझ आ जाती है, इसके लिए कुछ पढ़ना पढ़ाना तो दूर की बात है। अक़ल से पूछो, 4 दिन की दुनिया, फिर कब्र की अंधेरी रातें, फिर लंबी इंतज़ारगाह। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये लेना चाहते हो वो लेना चाहते हो, जो अल्लाह के पास है वो क्वालिटी के लिहाज से भी बेहतर है और हमेशा के लिए है। तुम्हारी दुआएं किस तरफ हैं, सिर्फ दुनिया की या आखरत की भी? तुम्हारी कोशिशों का रुख किस तरफ है, सिर्फ दुनिया की तरफ या आखरत की तरफ? खुद को झंझोड़ झंझोड़ कर पूछें, मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरी क्या तरजीहात हैं, किसका गम सता रहा है, किसकी खुशियाँ मना रहे हैं। ये अब आप और मैं अपने आप से खुद पूछेंगे कि हमारी ज़िंदगी में ये सब कुछ कैसे है। फिर यहाँ एक किरदार जिसको हम दौलत का किरदार कह सकते हैं, और वो है कारून। آیت 76 میں قارون کا تذکرہ ہے، مسلمان تھا، بنی اسرائیل سے تھا، لیکن اس کی ہمدردیاں کفار کے ساتھ تھیں۔ مسلمانوں کی جماعت چھوڑ کر کفار کے گروہ میں چلا گیا۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب اسلام نام کا ہوتا ہے۔ آج بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہی ہیں جن کا حال کیا ہے کہ اپنی قوم کے ساتھ تو معاملہ بڑی سختی کا کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو ہمیشہ برا کہیں گے اور دشمنوں کے ساتھ دوستیاں۔ تو قارون اپنی قوم کے خلاف کھڑا ہو گیا، حکومت وقت کا ساتھ دینے لگا کہ مسلمانوں کو مارو۔ کہتے ہیں کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اتنی تھیں کہ اونٹوں کی ایک جماعت کی لمبی قطار ہوتی تھی جو ختم نہیں ہوتی، چاہے کتنا خزانہ آ جائے وہ اللہ کی ذات سے بڑا نہیں ہو سکتا، اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا۔ یعنی قارون کی بھی دولت ہو تو وہ بھی اپنے وقت پہ ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 77 میں محاسبے کا نقطہ ہے، کیا میں اپنی صلاحیتوں کو آخرت کا گھر بنانے کے لیے استعمال کرتی ہوں؟ سوچئے ذرا، اپنے اوپر لیجئے، کیا میں اپنی صلاحیتوں کو آخرت کا گھر بنانے کے لیے استعمال کر رہی ہوں؟ کیا میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے آخرت کما رہی ہوں؟ آج ہم جا کر مسلمانوں کے گھر دیکھیں، محلات ہیں، کیسلز، ولاز، اور مسجدیں، مدرسے، اور دین کے کام کو دیکھیں تو اندازہ ہو جائے گا۔ ہائی لائٹ کر لیجئے اس جملے کو، جب قومیں ترتیب کو بدل دیتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کی قدر نہیں کرتا۔ آج ہمارے گھروں اور ہماری مسجدوں کے باتھ روموں کا فرق بس دیکھ لیجئے، باقی سب چھوڑ دیجئے، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کے جوان بچوں کا آپ مسجد میں دل کیوں نہیں لگتا۔ اس پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی پیغام یہی دیا کہ دنیا چار دن کی ہے، ختم ہو جائے گی۔ اللہ سے صرف اس دنیا ہی کی تمنا کر کے، دعائیں مانگ مانگ کر نہ چلے جاؤ، آخرت کے لیے بھی کوشش کرو، لوٹ کر تو اسی کی طرف جانا ہے۔ یعنی بڑا خوبصورت اور اسٹرانگ میسیج ہے سورت قصص کے اینڈ پہ، لہ الحکم و الیہ ترجعون۔ ذرا سا سوچے، واپسی کا سفر ہے، جانا تو ہے۔ دیکھیے، خود کو چٹکی کاٹ کر کہیں ابھی زندہ ہوں، ابھی کچھ کر سکتی ہوں، بچ سکتی ہوں، دوسروں کو بچا سکتی ہوں، آج سانس کی ڈوری ٹوٹے، ایک جھٹکا لگے، صرف پانی پیتے ہوئے وہ سانس کی نالی میں چلا جائے، کھانا کھاتے ہوئے اٹک جائے، ادھر اچو لگ جائے، کیا کریں گے؟ ہمارا تو نام بھی ہمارا نہیں رہے گا۔ تو صورت حقیقت میں دل کھولتی ہے۔